ਦਾਨ ਸਮੂਗਾ ਦਾ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ ਨਾਮ।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨੋਂ ਕਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਜੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਬੰਬੇ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਬਾਰੇ, ਪੂਰਵ ਬੰਗਾਲ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਜੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਾ ਵੀ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸੰਗਤੋਂ ਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਕੈਸੇ ਉਨਕਾ ਭਕਤੀ ਕਾ ਭਰਾ ਹੁਆ ਜੀਵਨ, ਕੈਸੇ ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹਾ ਥਾ। ਅਭੀ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਆਜ ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾ ਦਿਨ ਔਰ ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ ਕਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੇਂ ਸਮਾਗਮ ਯੂਪੀ ਕਾ ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਰਾਤ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੋ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਥੀ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਕਿ ਇਸਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਨੀ ਹੋਗੀ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸੁਹਾਵੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈਂ। ਕਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਉਹ ਥਾਨ ਵੀ ਐਸੇ ਸੁਹਾਨੇ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਂ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੀ ਹਾਲ ਮੇਂ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਥ ਭਗਤੋਂ ਕਾ ਇਕੱਠ, ਭਗਤੋਂ ਕਾ ਮਿਲਾਪ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਸਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰ ਭਗਤੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨੋਂ ਕਾ ਆਨੰਦ ਲੇਤੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਸੁਬਹਾ ਸੇ ਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਬਹਿਨੋਂ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਗਤੀ ਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਆ। ਜੈਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੇ ਸਾਥ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਕੇ ਸਾਥ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੁੱਖ ਮੇਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਤੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਮੇਂ, ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸੁੱਖ ਮੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਚਲਤੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬ ਮਿਲਕਰ ਬੈਠਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯਹੀ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸੰਤੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਨਕੋ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਬਸਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਬੈਠ ਕਰ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਐਸੀ ਕਭੀ ਕਭੀ ਕਾਲਗੀ ਸੀ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੋ ਬਾਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। क्योंकि वो संसार में बातें तो होती रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक बातें चलती रहती हैं, चाहे बातें बिजनेस के बारे हों, चाहे ऐसी बातें हों किसी की निंदा बखिली में पड़ जाएं, चाहे और भी ऐसी हो जाए कि हम एक दूसरे को देखकर बर्दाश्त भी ना करें। ये तो ऐसी ऐसी बातें तो सुबह से लेकर शाम तक देखने में आती है, पर उन बातों में सुख नहीं नजर आता। जहाँ भी ऐसी बातें कहीं के पास हुई, बैठने से सुनने को मिली, तो परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिला। इसीलिए संत महात्मा यही कहते हैं कि मन प्रभु के गुण गा ले तू। जब तू इसके गुण गाएगा, तेरे मन को शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, करार मिलेगा। नहीं तो सत्संग, ये मन तो आप जानते हैं कि इसने कभी भी अच्छी बात नहीं सोची। ऐसे ऐसी बुरी बातें इस मन के अंदर आ जाती हैं, नींद भी चली जाती है, भूख भी चली जाती है, और इतना इंसान परेशान हो जाता है कि उसको फिर ऐसा कोई भी पासा नजर नहीं आता जहाँ ये चैन का सांस ले सके। इसीलिए ये महात्मा का संग जो होता है, यही चैन देने वाला होता है। आप जानते हैं कि हम क्यों भाग भाग कर आते हैं। यहाँ हमें सुकून सा मिलता है, शांति सी मिलती है, हृदय को करार मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि अभी जैसे गर्मी शुरू होने वाली है, इतनी जोर की गर्मी धूप कड़ाके की होती है, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। बड़ी गर्मी है, बड़ी धूप है, जब किसी तालाब में उतर जाते हैं तो सत्संग ठंडक पड़ जाती है, पर वो ठंडक केवल शरीर को मिलती है, आत्मा को नहीं मिलती। आत्मा तो परेशान की परेशान है, आत्मा को तो तब शांति मिलती है कि जब पूर्ण सतगुरु से इसको इस रमे राम के दीदार हो जाते हैं, इसको ये आत्मा जान लेती है। जब जानकर भक्ति करती है तो इसकी भक्ति का इतना असर दूसरे के ऊपर होता है कि वो सत्संगत अपनी जिंदगी को भी संवार लेता है। तो आओ सत्संगत, ये संत तो सत्संगत अभी आपने छोटे छोटे बच्चों से भी सुना, कैसे तोतली जवाब में बात भी पूरी नहीं कह सकते, फिर भी सत्संग ढोलक लेकर और ऐसे आपके सामने सतगुरु की बात कही और भजन रखा के साथ से हम बड़े जितने भी इतने अरसे से बोलने वाले, हमें भी सत्संग ऐसे सिर झुकाना पड़ा के वाकई पहले सुनते थे कि भगत प्रहलाद तू प्रहलाद हुए हैं छोटे से बच्चे, पर आज तो सत्संग वो तो केवल सुने थे पर आज देखने में मिले हैं। फिर एक छोटे से बच्चे ने बाजा बजा कर सतगुरु की महिमा का जिक्र किया और सत्संग इतने हृदय में प्रसन्नता आई के दातार इनको और भी बल देना और शक्ति देना ताकि इसी तरह ये गुण गाते रहें। तो आओ सत्संग, इस अवतार वाणी में भी इसी तरह बताया है,
नाम है दारू सब गादा, सबे दुख मिटावे नाम।
कहते हैं कि ये नाम जो सतगुरु देता है जैसे कहे कि नाव तेरा निरंकार है, नाव लइए नरक ना जाइए। कहते हैं ये नाम जो दारू है सब रोगों का है। और सत्संग दारू भी हम देखते हैं, दवाई मिलती है हमें, डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर को तकलीफ होती है, पर वो तो आप जानते हैं कि अलग अलग दवाई मिलती है। पेट दर्द की और होगी, बुखार की और होगी, सारे बदन में दर्द की और होगी, ब्लड प्रेशर की और होगी, शुगर की और होगी, हार्ट की और होगी, जाने जितनी बीमारियां होगी अलग अलग दवाइयां होंगी। पर ये कहते हैं कि ये सतगुरु के पास जो दवाई है ये सारे रोगों की है। जो इस मन को रोग लगे हुए हैं, घृणा का, नफरत का, वैर का, विरोध का, ईर्ष्या का, लालच का, लोभ का, जलन भावना का, ये सत्संग जितनी बीमारियां इस मन को लगी हैं, इनकी सत्संग एक ही दवा है, हर का नाम सदा सुखदाई। यही सदीव काल के लिए यही दवाई सुख देने वाली है। इसीलिए महात्मा इसी पे ही जोर डालते हैं कि भगत तू अगर सत्संग में आता रहेगा तो फिर तेरे मन को चैन मिलता रहेगा। आप जानते हैं हम सुबह से निकलते हैं अपने अपने काम को, और सारा दिन कैसे वो काम में मगन होते हैं, थकान भी हो जाती है, और साथ संगत देखते हैं कि हमारे कपड़े भी कुछ मैले कुचाले हो जाते हैं, घर से धुले हुए डाल कर जाते हैं। सारे दिन में ही साथ संगत ऐसा हमें वातावरण भी मिल जाता है, पर जब शाम को घर आ जाते हैं तो साथ संगत सुख का सांस लेते हैं, कहते हैं बस अपने घर आ गया, बस सभी थकान दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह ही सत्संगत हम संसार में रहते हैं, संसार की परेशानियां हमारे ऊपर भी कभी कभी हमला कर लेती हैं, पर जब हम सत्संग में आकर बैठ जाते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर लेते हैं, तो साथ साथ सत्संगत वो दूर होती चली जाती हैं, एक एक कर कर दूर होती चली जाती हैं। कहते हैं दातार ये तेरी ही कृपा है, नहीं तो साध संगत आज हम हंस भी लेते हैं। जैसे साध संगत आप भी भजन बोलते हैं कि लोग सुख में भी परेशान हुए हो जाते हैं, हम दुख में भी हंस लेते हैं। ये साध संग केवल इस ज्ञान की शक्ति है, जो हमें सतगुरु ने जानकारी दी है, ये ज्ञान दिया है कि ये प्रभु है, ये परमात्मा है, ये निराकार है, ये सर्वव्यापी है। इसी को शस्त्र नहीं काटता, अग्नि नहीं जलाती, वायु नहीं उड़ाती, ये प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, हर जगह मौजूद है। सत्संग जिसको जब हम सामने अंग संग देखते हैं तो सत्संग जब इसका सिमरन चलता है तो परेशानियां सत्संग दूर हो जाती हैं। आती तो सबके ऊपर है, भक्तों को भी घेर लेती हैं, संसार को तो घेरे ही हुआ है, पर जब सत्संग इसका नाम लेते चले जाते हैं तो कितना मन सा इसे कहते हैं कि मन में कितना बोझ था, अभी तो इतना बोझ ऐसे लगता है उतर ही गया है। तो आओ साध संगत, क्योंकि ये सतगुरु की कृपा हो तो तभी साध संगत संतों के प्रवचन, सतगुरु के प्रवचन हृदय में वास कर सकते हैं। आप जानते हैं कभी आपने कितनी दफा ये मिसाल सुनी होगी कि कैसे एक शक्कर का ढेर लगा हुआ था, चींटियां आती थी उसके ऊपर से गुजरती जा रही थी, सब देख रहे थे, कहने लगे ये क्या बात है, शक्कर पड़ी और चींटियों उसके ऊपर से गुजर जाए, ये तो अजीब सी बात है। फिर कहने लगे, महात्मा भी बैठे थे, उनसे पूछा कि महात्मा ये क्या कारण है, जहाँ शक्कर और चींटियों तो वहाँ लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं, उससे पास से भी नहीं गुजर सकती, ये क्या बात है। कहने लगे एक चींटी को पकड़ो, इसके मुंह में देखो क्या है। तो सत्संग पकड़ा तो देखा उसके अंदर एक छोटा सा गंदगी का तिनका मुंह में रखा हुआ था। कहने लगे यही कारण है कि ये शक्कर का आनंद नहीं ले रही, शक्कर नहीं खा रही, क्योंकि इसके मुंह के अंदर गंदगी है, इसीलिए ये शक्कर के ऊपर से गुजरती चली जा रही है। इसी तरह ही साध संगत, इंसान के अंदर भी जब ऐसी बातें होती हैं, चाहे वो सत्संग में भी बैठा हो, पर वही वैर, वही वास्ते, वही उसके अंदर घिरना नफरत लेकर बैठा होता है, तो उसका साध संगत फिर कुछ भी उसके अंदर नहीं जाता। हाँ, अगर जैसे जैसे स्टेज पे प्रवचन आते हैं, भजनों द्वारा, कविता द्वारा, भाषण द्वारा, तो जब सत्संग ये सुनते चले जाते हैं, उनके तरफ ध्यान होता है, तो फिर सत्संग इस मन को ठहराव मिला रहता है। नहीं तो पता ही नहीं ये मन लगने देता, हम बैठे यहाँ होते हैं, ये पता नहीं कहाँ घूमता होता है। सत्संग में अपनी बात कह दूँ, अभी सत्संग बैठे बैठे ध्यान एक दफ ये मन निकल कर चला गया कि आज उधर समागम हो रहा है, ऐसे बाबा जी स्टेज पे विराजमान होंगे, इसी तरह संतों का इकट्ठ होगा। तो सत्संग बैठे बैठे भी पहुंच गया, पर अच्छी जगह पहुंचा, कोई सत्संग और किसी तरफ ध्यान नहीं गया, गया तो सतगुरु की तरफ ध्यान गया, सत्संग की तरफ ध्यान गया। तो आओ सत्संगत, ध्यान भी ऐसे होते हैं, कोई तो साध संगत जो संतों की तरफ लगे रहते हैं वो ध्यान अच्छे होते हैं, जो संसार की तरफ लग जाते हैं वो रोने के सिवा कुछ नहीं देते। सब कुछ होते हुए भी सत्संग, मुझे फिर वो शहनशाह की बात याद आ जाती, जब सब कुछ होते हुए किसी को रोते देखती हूँ, तो शहनशाह कहा करते थे अपने प्रवचनों में बाबा अवतार सिंह कि जैसे ये सुहागन भी रो रही और विधवा भी रो रही, उसमें ने तो रोना ही रोना है क्योंकि वो दुखी है, तो सुहागन क्यों रो रही है। तो आओ सत्संग, संसार की हालत तो इसी तरह ही है। ये सत्संग कहा है कि सतगुरु ने कृपा की तो हमें इन बातों से बचा लिया।
नाम शक्ति एनी लोको बिगड़ी गल बनावे नाम,
कहते हैं कि नाम में इतनी शक्ति होती है के बिगड़ी हुई बात भी ये बना देता है। सत्संग, आपने कभी कभी ये अंदाज़ा लगाया होगा कि जब कोई ऐसे काम बिगड़ जाता है, कोई बात बिगड़ जाती है, तो फिर सत्संग उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए सिमरन कर लेते हैं कि दातार के ऊपर छोड़ देते हैं कि सतगुरु ये तूने ही काम करना है, मेरे में कोई समर्थता नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। जब सत्संग छोड़ देते हैं, जैसे कहा है कि सब कुछ कीता मैं तेरे हवाले, लत्थी मेरी चिंता तू आपे संभाले, ये सत्संग जब छोड़ देते हैं इसके ऊपर, तो ये आप ही संभाल करता है, फिर आप ही सत्संग इसकी तरफ ध्यान देता रहता है। नहीं तो सत्संग जब हम विसार देते हैं, कहा कि तू विसरे तो सब कोई लागू, चीत आवे ता सेवा, कहा कि जे विसर जाता है तो सब भी सत्संग परेशानियां चारों तरफ घेर लेती हैं, जब याद रहता है तो फिर सत्संग इतना आनंद आता है, इतनी शांति मिलती है कि दातार तेरी बड़ी कृपा कि तूने हमें इस विशाल शक्ति के साथ जोड़ दिया। अगर ये विशाल शक्ति के साथ ना जुड़ते तो हम भी उसी तरह तंग दिली में ही घूमते रहते, हमारी भी तंग दिली इतनी होती कि एक दूसरे को बर्दाश्त ना करते, शायद पता नहीं क्या क्या कर बैठते, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया पे होता है ये तंग दिली से होता है, विशाल हृदय वाला कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता। जहाँ क्रोधी करता है या तंग दिली वाला, दूसरे को दुख देना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे की बुराई करनी, दूसरे का बुरा मांगना, ये सत्संग जितनी भी कुदूरते हैं ये सत्संग तंग दिली में ही आती हैं। विशाल हृदय वाला तो हर किसी के लिए भले की कामना करता है, वो तो यही कहता है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत का पला, के दातार तेरे भरोसे ही मैं ये लाड भी लड़ाता हूँ, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही आसरा है, तो तू ही हमें शक्ति देता है तो भाणे के अंदर रह सकते हैं। नहीं तो साध संगत इंसान तो इतना भटक जाता है कि अपने आप को फिर संभल भी नहीं पाता। कहते हैं कि जिसकी आंख में नूर नहीं होता तो उसको भी ये रास्ता दिखा देता है। आप जानते हैं कि ये नूर तो ही पूर्ण सतगुरु ही भरता है। जैसे अभी भी आप श्रवण कर रहे थे पहले भजन एक जोड़े से, एक ने लिखा तो सत्संग देखा जाए तो संसार वाली जो आंखें संसार को देखने वाली सत्संग वो तो नहीं नज़र आ रही थी, पर जो उन्होंने लिखा और जो बोलने वाली उसकी अंदरानी ने बोला, जो उसकी पत्नी ने बोला, वो आपने श्रवण किया कि कैसे वो नूर टपक रहा था। क्योंकि कहा भी नानक से अखड़ियाँ बिना बयान जिन्ना दिसंदो मापड़ी, कहते हैं कि वो आंखें ही और होती हैं जिससे ये दिखाई देता है। इन आँखों से तो हम संसार देख सकते हैं, पर जिसकी आँख में ये नूर भर देता है सासे मन रूपी आँख में ये नूर भर देता है, उसका एक एक बोल जो होता है उसकी कीमत पड़ जाती है, उसके एक एक बोल पे वाह वाह होती है। तो आओ सत्संगत, ये संत का एक एक बोल जो होता है वो सत्संगत, वही आप जानते हैं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ बनते हैं वो सत्संग जो बोल बोले जाते हैं उन्हीं को ही ले लेकर वो धार्मिक ग्रंथ समा पाकर बन जाते हैं, उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं को नमस्कारें होती हैं, उनका एक एक शब्द जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो हृदय में प्रसन्नता आती है कि दातार तूने बड़ी कृपा की, अगर ये भी ना होते तो पता नहीं हम भी इस रास्ते पे आते कि ना आते। ये जब ऐसे पढ़ा तो फिर ही साध संगत हमें पता चला कि वाकई सतगुरु की ज़रूरत बड़ी है, सतगुरु के बगैर कुछ भी ये साध संग ना प्रभु मिलता है या निराकार जिसको कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, ये साध संगत नहीं मिलता, ये सतगुरु मिला तो ये मिले हैं।
स्वर्ग रक्षा बन जाता है जिस घर भी बस जावे नाम,
कहते हैं कि जिस घर में नाम बस जाता है वो स्वर्ग का नक्शा बन जाता है, उसमें सत्संग छोटी मोटी बातों पे कोई तनाव नहीं होता, कोई खिंचाव नहीं होता, क्योंकि उन्हीं पे ही खिंचाव तनाव जब होता है तभी वही सत्संग स्वर्ग का नक्शा नहीं बनता, वो नरक का नक्शा बन जाता है। वो तो अपने आप ही कह देते हैं कि ये क्या घर है, ये तो निरा नरक है। तो जहाँ सत्संग नाम बस जाता है जिस घर में, वो स्वर्ग का नक्शा बन जाता है, चाहे ये शरीर रूपी घर है इसके अंदर, चाहे सत्संग जो घरों में हम रहते हैं उस घर में, क्योंकि ये भी तो एक घर है, इसमें भी ये आत्मा रहती है। तो आत्मा को सुकून होगा तो तब भी सत्संग ये स्वर्ग कहेगी कि मैं स्वर्ग में बैठी हूँ, अगर ये आत्मा माननी परेशान है तो फिर सत्संग वो नरक ही गिना जाता है। इसी तरह ही सत्संग जिस घर में प्यार होता है वो भी आप देखते हैं कि स्वर्ग का नक्शा बना होता है, जिस घर में तनाव होता है वो हम कहते हैं कि ये तो निरा नरक है, अपने मुंह से कह देते हैं। तो आओ सत्संग कहते हैं कि जिस घर में ये नाम बस जाता है वो स्वर्ग का नक्शा बन जाता है।
पूरा सतगुरु जगते लोको नाम दा ही व्यापारी है,
कहते हैं कि पूरे गुरु की यही निशानी है कि केवल वो नाम का व्यापारी है। सत्संग आगे भी पढ़ते थे बचपन में, कि बाबा नानक जी जगह जगह जाकर कहते थे मैं गरीब का कोई सौदा ले लो, क्योंकि ये नाम का सौदा जो है ये सत्संग पूर्ण सतगुरु ही बांटता है, यही व्यापारी है, यही व्यापार करता है। और भी व्यापारी आपने देखे हैं, कोई शक्कर का व्यापारी होते हैं, कोई मिर्चा के, कोई कपड़े के, कोई और सत्संग तरह तरह की, दुनिया के जितनी भी सामग्री होती है सत्संग व्यापारी होते हैं। पर ये सतगुरु जो है ये नाम का व्यापारी है, इसके पास तो नाम ही नाम होता है, ये नाम ही बांटता चला जाता है जगह जगह जाकर। सत्संग पहले सुनते थे कि बाबा नानक जी कहाँ कहाँ गए, बसरा, बगदाद, मक्का, मदीना, इतनी इतनी दूरी तक, तो उस वक़्त यही सुनने में आता था, कहते थे बाला मर्दाना को बैठो उड़न गठोले में। पर सत्संग जब हम ये अभी जहाज़ों में बैठकर बाबा जी जब दूर दूर जाते हैं तो पता चलता है कि उस वक़्त भी ये थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो दुनिया में सब कुछ होता है, थोड़ी देर ना हो तो फिर भी होता है। तो आओ सात संगत, जगह जगह जाकर इसी तरह ही जब जब भी महात्मा दुनिया पे आए, जिस युग में भी आए, उन्होंने ये सच की आवाज़ दी। तो सात संगत जब इसी तरह बाबा गुरबचन सिंह के साथ बसरा, बगदाद, ईरान, तिरान, उधर टर्की वगैरह और भी सात संग दुनिया के कोने कोने में जाने का अवसर मिला, तो यही कहा कि यहाँ तक बाबा नानक जी पहुँचे तो ये सच को बांटते चले गए। वो भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सुनना भी है कि जब बाबा नानक जी गए मक्के की तरफ, उन्होंने पाँव कर कर ऐसे थोड़ी देर लेट गए, तो अंदर से आए तो कहने लगे कि आ ये कौन काफर है, मक्के की तरफ पाँव पसार कर हो गए हैं। तो कहने लगे अच्छा जिधर मक्का नहीं है उधर मेरे पाँव कर दो। तो सत्संग कोई बिल्डिंग नहीं घूम गई, उनको बिठा कर ये समझा दिया कि ये चारों तरफ मक्का है, ये ज्ञान दे दिया कि ये केवल इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है, ये तो जैसे कहा है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शह में जलवा तेरा हू बहू है, चारों तरफ ही बता दिया। जैसे सत्संग मछली को ये होता है पता कि मैं पानी के अंदर, किसी से पूछे कि मछली कहाँ रहती है पानी के अंदर, खाती कहाँ है पानी के अंदर, सोती कहाँ है पानी के अंदर, घूमती कहाँ है पानी के अंदर, इसी तरह ही फिर सात संगत ये संत भी इसी तरह हर वक़्त ही चलते हैं, तब भी कहते हैं दातार के अंदर ही चल रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सात संग इसी में ही सारे ये काम होते हैं। तो आओ सात संगत यही अरदास प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, इसी तरह ही हमें संतों का संग दे रखना।
नाम मेरा निरंकार है, जो भी जान लवे निरंकारी है।
कहते हैं कि इसका नाम निराकार है और जान लेता है जो, वो भी निरंकारी हो जाता है, वो भी कहता है कि मैंने निराकार को जान लिया। जैसे डॉक्टरी किसने की हो तो डॉक्टर को भी हम सात संगत, जिसने डॉक्टरी की होती है उसी को डॉक्टर कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं, जो कपड़ा बेचते हैं उसको बजाज कह देते हैं, जो सात संगत सोना बेचते हैं उसको सराफ कह देते हैं। इसी तरह कहा है कि ये नाम जो देते हैं ये सात संग नाम के व्यापारी भी हैं, और सात संग इसी का नाम, जो निराकार को जानते हैं वो निरंकारी हैं। तो आओ सात संगत, ये निराकार तो जगह जगह पे, जैसे कहा है कि चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई, सतगुरु पूरा पेटिया जिस बंद बनाई, राम नाम खुदिया एका लिवलाई, रखन यारे रखिया सब व्याध मिटाई। ये आदियां व्याधियां को ख़त्म कर देता है, तो सात संगत इस मन को जब इस तरफ लगा देता है तो सात संग कहा है कि मन लोचे बुरियाइयां, गुरु शब्दी ए मन होड़िए। सत्संग मन तो बुराई की तरफ ही जाएगा, सत्संग चाहे कितने भी किसी में गुण हो तो वो गुण नहीं देखेगा, वो यही झांकता रहेगा कि इसमें कोई मुझे औगुण मिले मैं उसको उछालूं, इसमें कोई कुछ मुझे कमी मिले इसकी उसको उछालूं। तो आओ सत्संगत, जब सत्संगत ये सतगुरु के चरणों में गिर जाता है तो तो फिर साथ संगत इसको भी समझ आ जाती है कि नहीं, मैंने गुणों का ग्राहक बनना है, अवगुणों का नहीं बनना। तो साथ संगत आओ, जो गुणों के ग्राहक बन जाते हैं वो साथ संग गुण ही गुण इकट्ठे कर लेते हैं, जो अवगुण ही देखते रहते हैं वो अवगुण इकट्ठे कर लेते हैं। तो आओ साथ संगत, यही अरदास प्रार्थना करें कि दातार जैसे कहा कि गुणा का होवे वासला कड वास लीजे, जे गुण होवन साजना ते मिल सांझ करीजे। गुणों की सांझ रहे, गुणों की पाई वाली रहे, तेरे साथ नाता जुड़ा रहे, ताकि हर पहलू जीवन का सुखदाई हो। साथ संगत जी धन्यवाद।